Now we'll be talking about Renaissance, Rise of Capitalism and Industrial Revolution. This is also the part of our chapter 1 of class 8 NCRT, and the name of the chapter is India and the Modern World. Hum Renaissance, Capitalism aur Industrial Revolution ki baat karenge. और हमें पता है कि जो मैन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी था एंड एडवेंचर टू नो व्हाट ही डज नॉट नो हैज़ ऑलवेज गाइडेड हिम टू गो हेड राइट. सो रेनेसेंस के आने के बाद बहुत सारे फ्रेश इंसेंटिव्स हुए, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग एंड सो मेनी थिंग्स वर एडेड टू हिज थिंकिंग. एंड रेनेसेंस ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था यूरोप में, जो चीज़ें इटली में शुरू हुई थी और जिसकी बेसिकली यही था कि रेनेसेंस के आने के बाद पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द साइंटिफिक मेथड एज वेल. देन देयर वॉज ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मेथड, देयर वॉज लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग, देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस एंड दैट, और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन शुरू किया, एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया, और जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज आज हमें दिखते हैं ये सारे इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं. फर्स्ट इज़ लर्निंग बाई क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये आज की मॉडर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज का यही बेस है. और जो क्वेश्चनिंग स्पिरिट थी इसने यूरोपियंस को प्रोवोक किया कि उन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई. देन दे ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट द ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथलिक चर्च एज वेल, जिसके ऊपर लोग ब्लाइंडली फेथ करते थे. एंड दिस एटीट्यूड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि यूरोप के कॉन्टैक्ट्स बाहर के देशों के साथ भी थे, ट्रेड की वजह से हों या अदर मीन्स की वजह से हों, दे हैड गुड कॉन्टैक्ट्स विद अदर पीपल एज वेल. और मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो प्रॉस्पर किए, दे स्टार्टेड डेवलपिंग. एंड मेन रीज़न वॉज दैट कि ट्रेड की वजह से बहुत सारे टाउन्स जो है वो नए टाउन्स सेटलमेंट्स हुई, एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर लोकेटेड ऑन द सी रूट्स या फिर रिवर साइड्स पे. एंड जितनी भी प्लेसेस कन्वीनियंट थी ट्रेड के लिए, ये सारे जो टाउन्स हैं वो ये वहीं पे सेटल होते थे. और जो मर्चेंट्स थे इन टाउन्स में रहने वाले, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे लोगों के लिए. एंड धीरे धीरे मर्चेंट्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. टाउन्स जो हैं बहुत ही फ्री काइंड ऑफ प्लेसेस थी उस टाइम पे, जहाँ पे हमें हर तरीके की थिंकिंग और एक्टिविटीज़ मिलती थी, चाहे वो आर्ट की एक्टिविटीज़ हो, लिटरेचर की एक्टिविटीज़ हो, मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द टाउन्स. एंड जो इम्पॉर्टेंस है इस कम्युनिटी की, हम मर्चेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इट ग्रेजुअली बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रेड जैसे जैसे बढ़ा तो मर्चेंट्स की इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है सोसाइटी में, और मर्चेंट्स जो हैं एक हाई पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे सोसाइटी में और गवर्नमेंट में भी. और इसी के साथ में मिडिल क्लास एक नया ग्रुप आया बिटवीन नॉबल्स एंड द कॉमन पीपल. ये वही मर्चेंट्स हैं जो मिडिल क्लास ग्रुप बन के सामने आते हैं. एंड मर्चेंट्स को धीरे धीरे स्किल्ड आर्टिजन्स ने ज्वाइन किया एंड मैन्युफैक्चरर्स ने ज्वाइन किया, और धीरे धीरे इनका जो मिडिल क्लास का साइज़ है वो बढ़ गया और इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई. और जो पीरियड था रेनेसेंस का वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन. पीपल यूज्ड टू फाइंड आउट वेज टू रीच प्लेसेस बिकॉज ट्रेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वांटेड टू फाइंड आउट प्लेसेस जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते थे. जो सेलर्स थे, नेविगेटर्स थे यूरोप के, उन्होंने बहुत सारे नए सी रूट्स डेवलप किए, ढूंढ निकाले एशिया जाने के सी रूट्स, और काफ़ी सारे लैंड रूट्स भी जो अनडिस्कवर्ड थे वो लोगों को पता चले. हमें ऑलरेडी पता है कि जो वास्को द गामा है, ही रीच्ड इंडिया एंड ही फाइंड आउट द सी रूट टू इंडिया, एंड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका जो कोलम्बस ने किया था. ये सारी डिस्कवरीज जो लैंड रूट्स की हुई, सी रूट्स की हुई, इससे बहुत सारा ट्रेड जो है वो यूरोप में बढ़ा. एंड यूरोपियंस ने अपनी बहुत सारी ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनीज भी सेटअप की धीरे धीरे जहाँ पे वो ट्रेड करते थे. और अगर हम अमेरिकाज की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था. कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे सेटल हुए थे एंड दे ऑक्यूपाइड अमेरिकाज. और जितनी भी ये डेवलपमेंट्स थी, इससे जो है फ्यूडलिज्म का एंड हो रहा था यूरोप में, बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी विद फ्यूडलिज्म आल्सो एंड दे वर नॉट हैप्पी विद चर्च आल्सो. और एक नया सिस्टम डेवलप हुआ यूरोप में, जिसका नाम था कैपिटलिज्म. और जो मेन फीचर है कैपिटलिज्म का वो ये था कि कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. वन वाज द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द अदर्स वर द वर्कर्स. जो वर्कर्स थे दे यूज टू वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड देयर वर्क वॉज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड दे रिसीव वेजेस फ्राम द कैपिटलिस्ट. और जो कैपिटलिस्ट है उनका मेन मोटिव था प्रॉफिट एंड दे ऑल्सो कंट्रोल द सेल ऑफ गुड्स एज वेल. ये जो नया सिस्टम आया था, हाउ डिड इट केम टू द सोसाइटी, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. जो एक्सपेंशन हुआ है ट्रेड का यूरोप में और एब्रॉड में, इसने यूरोपियन बिजनेसमैन को कंपेल किया कि वो अपना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा इम्प्रूव करे सो दैट गुड्स जो हैं वो क्विकली प्रोड्यूस हो सकें और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकें. और जो हाई डिमांड थी गुड्स की, इसकी वजह से उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे चेंजेस आए. अगर हम आर्टिसंस की बात करते हैं तो आर्टिसंस घर पे काम करते थे एंड दे यूज टू वर्क विद सिंपल टूल्स एंड दे वर आल्सो हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स. दे कलेक्टेड द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द मर्चेंट्स और ये सप्लाई करते थे आर्टिसंस उनको फिनिश गुड्स के साथ. और ये जो डोमेस्टिक सिस्टम था, ये लोगों की जो मार्केट में डिमांड्स थी उसको ज़्यादा देर तक पूरा नहीं कर पाया. इसलिए 18 सेंचुरी में फैक्ट्री सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ और जो फैक्ट्री ओनर थे ही इन्वेस्टेड मनी टू कलेक्ट रॉ मटेरियल्स इन ह्यूज क्वांटिटी. अब ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल आ रहा था बिकॉज द डिमांड वॉज ऑल्सो इन ह्यूज क्वान्टिटी एंड ही एम्प्लॉयड मेनी आर्टिसंस. हम फैक्ट्री ओनर की बात कर रहे हैं हु कुड नाउ वर्क विद द हेल्प ऑफ न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स एंड देन द फैक्ट्रीज सोल्ड द फिनिश्ड गुड्स. जो वर्कर्स थे दे नो लॉन्गर वर्कड एट होम बट इन अ फैक्ट्री. सो अंडर द न्यू सिस्टम द फैक्ट्री ओनर और द कैपिटलिस्ट वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द सोसाइटी एंड नाउ ही हैज ऑल्सो रिप्लेस द फ्यूडल लॉट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स. और इंग्लैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इस सिस्टम को डेवलप किया. हम कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं. और जो यूज़ था मशीन्स का, ये भी इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था सबसे पहले. और अगर हम बात करें तो स्पिनिंग जेनी जो है एक न्यू काइंड ऑफ लूम था, ये इन्वेंट हुआ. स्टीम पावर जो है ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन इंग्लैंड. एंड ये जो डेवलपमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि यूरोप में सबसे पहले आई. और इट्स स्टार्टेड इन इंग्लैंड लेटर पार्ट्स 18 सेंचुरी के, ये इंग्लैंड में भी शुरू हो गए. और धीरे धीरे अगर हम टाइम थोड़ा लेने के बाद, जो ये रेवोल्यूशन थी इसने पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट किया एंड नॉट ओनली इन यूरोप, इट इफेक्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एवरीवेयर. और फर्दर अगर हम इन्वेंशंस की बात करते हैं तो देर वर इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ब्लास्ट फर्नेस, न्यू डिवाइसेस ऑफ कास्टिंग एंड रोलिंग आयरन मेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इवन मोर पावरफुल फोर्स देन बिफोर कैपिटलिज्म द न्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो है इन्होंने पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही बदल के रख दिया एंड नॉट इवन देयर कंट्री, नॉट इवन यूरोप वॉज इफेक्टेड, बट द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वॉज इफेक्टेड विद कैपिटलिज्म, रिनाइसेंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसके बाद आते हैं हम अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पे. अगर हम 18 सेंचुरी का लेटर पार्ट देखते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुई थी जिन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में. और दीज वर द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये दो रेवोल्यूशंस थी. एंड जो पहली रेवोल्यूशन है, अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें इंग्लिश गवर्नमेंट है अगेंस्ट इट्स 13 कॉलोनीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी. एंड इंग्लिश की ही वो 13 कॉलोनीज थी. जैसे इंडिया में, इंडिया वॉज ऑल्सो ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, द सेम थिंग हैपेंड विद द अमेरिकाज. नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी जो इंग्लिश की थी. एंड जितने भी लोग यहाँ पे सेटल हुए थे दे बेसिकली केम फ्रॉम इंग्लैंड, बट दे वर नॉट गिवन द राइट्स विच इंग्लिश मैन लिविंग इन इंग्लैंड इंजॉयड. तो उनको वहाँ पे वो राइट्स नहीं मिल रहे थे जो इंग्लिश मैन, जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड में रह के जो राइट्स मिल रहे थे वो वहाँ पे नहीं मिल रहे थे. और जो इंग्लिश कॉलोनीज में नॉर्थ अमेरिका के सेटलर्स थे दे वर अंडर द रूल ऑफ द मदर कंट्री इंग्लैंड. जैसे कि वो कॉलोनी थी उनकी तो दे विल बी कंट्रोल एंड ये लोग वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे. हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड यूज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दीज कॉलोनीज फ्रॉम द सेटलर्स. एज द टैक्सेस वर हाई, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते थे बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज किया गया इंग्लिश गवर्नमेंट का, और इसीलिए जो है कॉलोनीज दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. देर वर अपराइजिंग्स इन मेनी प्लेसेस इन द 60s एंड अर्ली 70s ऑफ द 18th सेंचुरी. और जो लोग हैं इन कॉलोनीज के, दे बिगन टू कंसिडर देमसेल्व्स अमेरिकन एंड एज अ नेशन विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंग्लैंड. तो इंग्लैंड के बार बार इंटरफेयर करने से दे वर वेरी मच डिस्टर्ब्ड. हम 13 कॉलोनीज की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में थी, नॉर्थ अमेरिका में. सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग बिकॉज टैक्सेस ये लोग इतने कलेक्ट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चलाते थे. सो इट वॉज अ कॉलोनी विच वॉज पर्टिकुलरली कंट्रोल्ड बाय इंग्लैंड. सो द अमेरिकन्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. और जो काफ़ी सारे सेटलर्स थे, दे वर इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ दैट टाइम. और जो कुछ इंग्लिश और फ्रेंच फिलोसोफर्स थे उस टाइम के, उन्होंने कहा था कि लोगों के या मैन हैड सर्टन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो कि कोई गवर्नमेंट उनसे ले नहीं सकती. और राइट टू रिबिलियन अगेंस्ट इनजस्टिस वॉज वन सच राइट. अगर आपके साथ सही नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट, यू हैव द राइट टू रिबेल अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू यू, वेदर इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ डन बाय एन इंडिविजुअल, यू हैव द राइट टू स्पीक. सो यू शुड रेज योर वॉइस. दिस वॉज द फिलोसफी ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच फिलोसफर्स एंड पीपल यू स्टार्टेड फॉलोइंग दिस दिस फिलोसफी. एंड वन सच अमेरिकन लीडर वॉज थॉमस जेफरसन. एंड उसने इनक्रेज किया फेलो सेटलर्स जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज में रहते थे टू कि वो अपना राइट जो है एक्सरसाइज करें. और 4 July 1776 को जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 13 कॉलोनी के, ये एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस हैपेंड इन 4 July 1776. एंड उसमें ये लिखा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दैट दे एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टन इनअलाइनेबल राइट्स, दैट अमंग दीज राइट्स आर लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. और ये सारी चीज़ें मेंशन थी उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें. और जैसे ही इंग्लिश गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं किया था जो अमेरिकन्स हैं, दे स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और इवेंचुअली हम देखेंगे कि ये जो कॉलोनीज हैं दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे अडॉप्टेड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉल देमसेल्व्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसमें वो इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द पीपल एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु नाउ फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट इन यूएसए अडॉप्ट